اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے اپنے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں کو چار حصوں میں بانٹیں گے. پہلے درجے پہ جو کام ہیں وہ ہیں اہم اور فوری, جس کو انگلش میں آپ کہیں گے امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ. دوسرے درجے کے جو کام ہوں گے وہ ہوں گے اہم لیکن فوری نہیں, یعنی امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ. تیسرے درجے پہ جو کام ہوں گے وہ کون سے ہیں؟ نہ وہ اہم ہیں اور نہ وہ فوری ضرورت کے ہیں, یعنی ناٹ امپورٹنٹ. اور بلکہ تیسرے درجے پہ کر لیجئے کہ ناٹ امپورٹنٹ بٹ ارجنٹ. کچھ کام زندگی میں ایسے بھی ہوتے ہیں. تیسرے درجے کے کام کیا ہیں؟ ناٹ امپورٹنٹ بٹ ارجنٹ, یعنی اہم نہیں لیکن فوری کرنے کے ہوتے ہیں. اور چوتھے درجے پہ پھر کام آئیں گے کہ جو نہ تو اہم ہیں اور نہ فوری ہیں, ناٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ. اس کے مطابق اپنی زندگی میں کاموں کو چینلائز کیجئے. ہر کام کو اتنا ہی وقت دیں جو اس وقت کرنے کی اس کی اہمیت ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ جو پہلی کیٹیگری آپ کو بتائی اس میں وہ کام آتے ہیں جو امپورٹنٹ بھی ہیں اور ارجنٹ بھی ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ بچے کو چوٹ لگ گئی, اب یہ اہم بھی ہوا اور فوری کرنے کا بھی ہے. چھت ٹپکنے لگی, سنک بلاک ہو گیا, تو ایسے کاموں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کو فوراً توجہ دیں, کیونکہ اگر اس کو آپ ڈیلے کریں گے تو پھر یہ ایک بہت بڑا اور فتنہ آپ کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور آپ اس کام کو ٹھیک طرح سے نہیں کر سکیں گے. لیکن عموماً ایسے کام بہت کم ہوتے ہیں, انہی کو ہم ایمرجنسیز کہتے ہیں. اسی طرح دوسرے درجے پہ جو کام تھے امپورٹنٹ تو ہیں لیکن فوری کرنے والے نہیں ہوتے. مثلا آپ دیکھیے پلاننگ کرنا, آپ کو کوئی ایک مثال ہے, کلاس شروع کرنی ہے تو اس کی پلاننگ کرنا ہے. اب یہ اہم بہت ہے لیکن اب ضروری نہیں کہ آپ فوراً ابھی کریں. بعض آپ کے خواب ہوتے ہیں, کچھ آپ نے ڈریمز دیکھے ہوئے مستقبل کے لیے. مثلا آپ کا کوئی امتحان ہونے والا ہے, ابھی آپ کو 3-4 مہینے ہیں آپ کے پاس, تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ امپورٹنٹ تو ہے لیکن ارجنٹ نہیں. ایسے کاموں کو عموماً ہم پیچھے ڈالتے رہتے ہیں, توجہ نہیں دیتے. اسی میں ایک یہ بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جس میں مثلا آپ کو اپنی شارٹ کمنگز ہیں اس کو پورا کرنا ہے, تجوید درست کرنی ہے اپنی, یا اگر آپ کو کوئی سکل سیکھنی ہے, کمپیوٹر کو آپریٹ کرنا سیکھنا ہے. اب یہ اہم ہیں لیکن چونکہ یہ ارجنٹ نہیں ہوتے تو ہم اس کو ٹالتے ہیں. ایسے کاموں کو ٹالنا نہیں چاہیے بلکہ کر لینا چاہیے, توجہ دینی چاہیے فوراً, کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ اس کو ایک دفعہ کر کے اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو آپ اپنے آپ کو زیادہ مطمئن محسوس کریں گے نا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تیسری قسم کے جو کام ہیں کہ اہم تو نہیں ہوتے لیکن ارجنٹ ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ اس میں کوئی ایسی زندگی موت کی چیز نہیں ہوتی لیکن اہم بہرحال یعنی کرنے کے فوراً ہوتے ہیں. مثلا کوئی مہمان آ گیا, آپ نے اب اس کو چائے پوچھنی ہے, اس کی خاطر مدارت کرنی ہے, تو اچھی بات ہے, یہ ارجنٹ ہے, یہ ابھی ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے نہیں, اس وقت تو چونکہ میرے پڑھنے کا ٹائم ہے تو لہٰذا مجھے تو یہ پڑھنا ہے, اور آپ پھر کبھی آتے دوبارہ تو پھر میں اس وقت چائے پوچھوں گی. ایسا نہیں کرنا, ایسے کاموں کو اس کی اہمیت کے ناطے سے دیکھنا ہے. اب دیکھیے کہ جب ہم قرآن کے سفر کی طرف آتے ہیں تو بعض دفعہ ہمارے ذہن میں ایک لفظ آ جاتا ہے اور وہ کیا ہے؟ پابندیاں. بعض دفعہ ہم کسی چیز کو کمٹ کرتے ہوئے اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ پھر بہت پابند ہونا پڑے گا. تو اس کے لیے یاد رکھیے کہ اگر آپ نے خود کو پابند کر لیا نا, خود آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دے دی کہاں کس وقت کس چیز کا کام ہے, کس کی ضرورت ہے, تو آپ محسوس کریں گے کہ اس کام کو کرنے میں آپ کو فائدہ ہوگا, اس کو کر لیجئے. مثال ہے کہ اگر آپ گھر سے کلاس لے رہے ہیں, آپ نے کمٹ کیا اور آپ نے کہا ہمیں کہ آپ کلاس لیں گے اور پورا وقت سنیں گے, ٹھیک ہے, مان لیا. اسی دوران اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے بغیر بتائے, تو کیا آپ اس وقت کلاس میں بیٹھے رہیں گے؟ ممکن نہیں نا. चंद मिनट आपको उठना पड़ेगा, हाल पूछना, सलाम दुआ करना, बात करें, फिर उसके बाद जहन आपका इधर ही लगा रहे। और उनको अगर आपको लगे कि उनका बैठने का मूड है तो फिर बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से कह सकते हैं, आइए आप भी मेरे साथ सुनिए। बस ये थोड़ा सा रह गया, फिर इंशाल्लाह ताला हम इसको बाद में बैठ के काम करेंगे। और कुछ तो यानी आपको अगर हैंडल करना आता है तो ज़ाहिर है कि जो लोग आपको ऐसे प्रोग्राम्स देते हैं वो भी इंसान होते हैं और उनको मालूम है कि आपके लिए क्या बेटर है। मिसाल है, आप क्लास के वक्त में हैं और आपके शौहर आ जाते हैं और उनको कोई चीज़ पेपर भूल गए घर में, कोई उनको ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जिसमें आपकी हेल्प चाहिए थी, तो आपको उठना पड़ेगा, आप उठेंगे, लेकिन आप उस मिस हिस्से को बाद में मेकअप कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, उसको छोड़िए नहीं कभी। उस वक्त का नोट करें और फिर बाद में किसी भी ज़रिए से, रिकैप में या रिप्ले में या कोई और मौका है, तरीका है, अपने ग्रुप्स में ग्रुप लीडर्स की हेल्प से उसको कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल प्लानिंग जो है वो ज़िंदगी को आसान कर देती है। चौथी किस्म के जो काम होते हैं कि नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, ये वो काम है जो हम सबसे ज़्यादा करते हैं। यदि आप लिख के देख लें अपने कामों को, उसकी तरतीब देखें, अमूमन जो काम हम करते रहते हैं वो ऐसे ही काम होते हैं, मसलन अखबार पढ़ना। अब ठीक है, अच्छी बात है, हालात हाजरा से खबर रखनी चाहिए, लेकिन क्या सुबह जब उठ के कुरान पढ़ने का वक्त है आप उस वक्त हमारी अक्सरियत अखबार पढ़ती है? खबरें तो लोग भी आपको बता देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है कि जो अहम खबर होती है वो लोगों से सुनती हूँ। लेकिन बहरहाल आप पढ़ सकते हैं, इसमें ये नहीं मैं कह रही कि अखबार ना पढ़ें या ख़बरें ना सुने, लेकिन अपने वक्त का हिसाब रखें। इसी तरह आप देखें, हर वक्त लंबे लंबे फ़ोन करना, हर कॉल अटेंड करना, इसी तरह आप देखिए कि बहुत सफ़र लोग आपको फ़ोन करते हैं ऐसे वक्त में जब आप मसरूफ़ होते हैं किसी और काम में, तो अच्छे तरीके से बता दीजिए, इस वक्त से इस वक्त का काम मेरा मसरूफियत का होता है, आप अगर चाहते हैं तो दूसरे वक्त में कर लें, ताकि लोगों को भी एहसास हो कि आप बेमकसद इंसान नहीं, आप एक मकसद के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आपका काम जो है वो दूसरे लोगों के ऊपर भी उसका असर आता है। तो मेरा ख्याल है कि जब आप लोगों को अपने काम की अहमियत बता देते हैं तो इंशाल्लाह ताला वो भी समझते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई बुरा माने, अगर मैं किसी से कहूँ कि इस वक्त मैं मसरूफ़ होती हूँ आप दूसरे वक्त में कर रहे, लोग खुशी खुशी मानते हैं, अच्छा ठीक है। हाँ, नए लोग अगर कभी कर दें तो उनको प्यार से बाद में आप बता दें। फिर बस लोगों को एक और बहुत शौक होता है, आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम, ये आदत निकाल दें ज़िंदगी से, क्योंकि हर वक्त तो सिर्फ फिर अल्लाह की ज़ात ही है जो मिल सकती है। आप लोगों की आंखों का तारा बनना चाहते हैं, ये मुमकिन ही नहीं। आप ज़िंदगी में कोई बड़ा काम कर नहीं सकते फोकस हुए बगैर। मसलन आप देखिए कि इस तरह से आप काम कर सकते हैं कि जिसमें आपका वक्त ज़ाया होता है, डाइजेस्ट पढ़ना, नावल पढ़ना, खामखा टीवी के चैनल घुमाते रहना, रॉन्ग कॉल्स करते रहना, ये क्या है, ये दुरुस्त चीज़ नहीं है, इंसान को नुकसान होगा इससे। बल्कि आप अगर अखबार पढ़ने वाली बात को तीसरे नंबर पर ले आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि जो नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, अगर आपने कोई काम ऐसी चीज़ है जिसको आप थोड़ा सा शुरू में करना चाह रहे थे, कर लीजिए, उसका वक्त दे के फिर उसके बाद उसको ख़त्म करें। लेकिन हर वक्त अपने आप को मसरूफ़ रखना और ऐसे कामों में रखना, ये चीज़ को दुरुस्त नहीं। अपनी ज़िंदगी में अगर हम बेकार चीज़ों को निकाल देंगे तो आप देखिएगा कि काम करने के लिए बहुत चीज़ जगह मिलेगी। मसलन आप देखिए, जैसा कि वक्त पे बात हो रही है तो इसी तरह बाकी चीज़ों में भी अमूमन हमारे साथ ऐसा ही होता है। बस हम कहते हैं कि मेरी कैबिनेट्स में जगह नहीं रही, अब इसका इलाज क्या है कि एक और कैबिनेट ले आए, बताइए क्या ये सही हल है? हरगिज़ नहीं। आप क्या करें, कपड़े कम करें, इसका ये मतलब है कि आपके पास कपड़े ज़्यादा हो गए हैं। ज़िंदगी में इस असूल ने मुझे तो बहुत फ़ायदा दिया कि आपने अपनी चीज़ों को वहीं रखना है, जो उसके अंदर चीज़ें पूरी नहीं आ रही तो चीज़ें कम कर दें, वरना एक वक्त आता है कि घर जो है ना वो एक, यानी समझने के कबाड़िए की दुकान दिखने लगती है। कम से कम चीज़ों में ज़िंदगी आसान रहती है। अब देखिए कि जिनको तेज़ भागना होता है ना तो वो अपने कपड़े हल्के कर लेते हैं, हर वो चीज़ जो उनके रास्ते में रुकावट बनती है उसको अपने से दूर करते जाएं। फिर इससे फ़ायदा होगा आपको कि आप लोग बहुत काम अच्छे कर सकेंगे और बेकार चीज़ें आपसे निकल जाएंगी। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक चीज़ आपने अपनी शख्सियत में लेके आनी है और वो क्या है, मंसूबा बंदी। और इत्तेफाक देखिए कि बहुत सारी चीज़ें ते के साथ शुरू होती हैं। ये इनकी किताब है बशीर जुमा साहब की, शाहराह ज़िंदगी पर कामयाबी का सफ़र। तो इसमें से एक पढ़ के सुनाऊँगी आपको, बड़ा अच्छा एक इन्होंने नुक्ता इसमें लिखा। कहते हैं कि आपकी शख्सियत के ते, यानी ते जो होता है ना अलिफ बा ता, तो ता कितना है मैं मनसूबा बंदी के लिए ज़रूरी है कि आपकी शख्सियत में तवाज़ुन हो। अब ये देखें ये सब ते से शुरू हो रही हैं चीज़ें। तरतीब हो, आप लिखते जाइए क्योंकि आपने देखना है इस सब को अपने अंदर। तसलसल हो, आप तफक्कुर करते हों, आपके तरीके में तसखील, तसखील कहते हैं सहल से, आसानी हो, आपके साथियों के साथ काम करने और काम लेने में तवाज़ो हो, यानी इनकिसारी, रोब डालने का अंदाज ना हो अपने साथ वालों के साथ बल्कि आजजी के साथ, आप अपने साथियों की बेहतरीन तरबियत कर सकते हो, तरगीब दे सकते हो, रगबत दिलाना, मोटिवेट करना जिसको आप कह सकते हैं, तंबीह कर सकते हो, अपने मामलात का तजिया कर सकते हो और अपना तज़किया कर सकते हो, इनको वसी तनाजुर में देख सकते हो, यानी आपकी विज़न बड़ी ब्रॉड हो, ब्रॉड माइंडेड हो, नैरो माइंडेड ना हो, छोटी सी पिक्चर ना देखें बल्कि खुल के देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है, और आखिरकार कामयाबियों पर तशक्कुर और गलतियों पर तौबा कर सकते हो। दर हकीकत ये बहुत से ते हैं जो कि इस सिलसिले में आपकी शख्सियत में होने चाहिए। अगर आप ये सारे नोट कर चुके हैं तो फिर आप नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी क्या है कि आपने अपने लिए एक चेक लिस्ट बना के ढूंढना है क्या वाकई मेरे अंदर ये है। मैं आपकी सहूलत की खातिर ये सारे लफ्ज़ दोबारा बोल देती हूँ, एक तर लाइन में लिखते जाइए और फिर आगे अपना जायज़ा लेंगे आप बाद में, क्या मेरे में है, क्या मेरी शख्सियत में तवाज़ुन है, तरतीब है, तसलसल है, तफक्कुर करती हूँ, मेरे तरीके तस्हील यानी आसानी वाले होते हैं, ता सीन हा या लाम, क्या आपके साथियों के साथ काम करने में तवाज़ो है। अब ये आप लोग बता दें जो हमारे साथ काम करते हैं, या आप किसी के साथ काम करते हैं तो आप उनसे पूछिए कि क्या हम आपको जब कोई काम देते हैं या कुछ शामिल करते हैं अपनी टीम में तो तवाज़ो और इनकिसारी के साथ करते हैं या हुक्म देते हुए। फिर अगला नुक्ता था अपने साथियों की बेहतरीन तरतीब तरबियत कर सकते हो, यानी आपके अंडर कोई लोग हैं, मसलन अगर आप लोग कहीं भी ज़िंदगी में काम करते हैं, एक तरबियत तो हर औरत कर रही है अपने बच्चों की तरबियत। ये इतना बुनियादी नुक्ता है कि बच्चों की तरबियत में भी आपके अंदर एक आजजी और एक मोहब्बत का इजहार होना चाहिए, वरना बच्चे मज़ीद बिगड़ जाते हैं। तरगीब दे सकते हैं, यानी क्या आप रगबत दे सकते हैं, मोटिवेट करते हैं, ये अमूमन लोगों का मसला होता है, लोगों को बताते हैं क्लास का वो आते नहीं, तो मैं उनको कहती हूँ हमेशा कि आप हुक्म ना दिया करें, आइए नहीं, रगबत दिलाइए, अपना जायका उनको चखाइए, वो खुद ही आ जाएंगे, और जो नहीं आते कोई बात नहीं, वो कहीं और से सीख लेंगे, आपका काम तो सीख कहने का है ना। फिर उसके बाद आप देखिए कि आगे जो चीज़ है वो तंबीह करने की। तंबीह करना किसको कहते हैं, आगाह करना, यानी थोड़ा सा नुज़ुर, डराना, गलत काम करोगे तो देखो इसका ये नतीजा होगा। फिर क्या मैं अपने मामलात का तजिया करती हूँ, तजिया बहुत अहम होता है करना, इसलिए कि इसके बग़ैर इंसान अपनी गलतियों को जानता नहीं। फिर अगली बात क्या थी, अपना तज़किया कर सकती हूँ, मैं करती हूँ तज़किया। फिर क्या मैं वसी तनाजुर में देखती हूँ, यानी मैं ब्रॉड माइंडेड हूँ या नैरो माइंडेड हूँ, मेरी सोच कैसी है, एक ख़ास सिनेरियो में चीज़ को देखती हूँ या ओवरऑल इमेज से देखती हूँ। और फिर आखिरी पॉइंट अपनी चेकलिस्ट का आप लिखेंगे, क्या मैं अपनी कामयाबियों पर तशक्कुर और ग़लतियों पर तौबा करती हूँ। मेरा ख्याल है कि आप खुल के अपने सामने आ जाएंगे, दूसरों से पूछने की बजाय ख़ुद से पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं। इसके बाद आपके साथ एक इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की जो सेइंग है वो शेयर करूंगी कि किस तरीके से हम यानी यूज़लेस चीज़ों के अंदर आ जाते हैं, यानी 10 अहम फैक्टर्स उन्होंने बयान किए कि ये तमाम चीज़ें बेकार हैं। कौन सी? नंबर एक, ऐसा इल्म जिस पर अमल ना हो, ऐसा अमल जिसमें इखलास ना हो और ना सुन्नत के करीब हो, ऐसा माल जमा करके रखना जिससे ना खुद को फ़ायदा दें ना दूसरों को फ़ायदा मिले, ऐसा दिल जिसमें अल्लाह की मोहब्बत का लुत्फ़ नहीं। अपने जिस्म से कोई ऐसा काम न लेना जो अल्लाह की इबादत शुमार हो। अल्लाह की मोहब्बत का दावा करना मगर इसकी इताअत न करना। वो वक्त भी बेकार है जिसमें ना माफ़ी मांगी ना गुनाहों से बचे और ना ही कोई अच्छा काम किया। ऐसा ज़हन जो बेकार बातों को सोचे, हर वक्त उन लोगों को खुश करते रहना जो ना अल्लाह के करीब ले जाएं ना खैर और भलाई की तरफ ले जाएं। और आखिरी नुक्ता क्या है, उससे उम्मीद रखना और डरना जिसके हाथ में ना हमारा नफ़ा है और ना नुकसान। अब आप देखिए इस एक सेइंग पे आप कितनी खूबसूरत चेकलिस्ट बना सकते हैं, उसके पॉइंट किस तरह से होंगे। क्या मैं अपने इल्म पर अमल करती हूँ, पहला नुक्ता है। अगला नुक्ता आपकी चेकलिस्ट में क्या आएगा, क्या मेरे अमलों में इखलास और सुन्नत की इत्तेबा है। ये कैसे पता चलता है, बहुत आसान है और मुश्किल भी बहुत है। और मुझे लगता है ये वो काम है जो आप आखिरी दम तक करते रहें तभी बचेंगे। वरना मैंने देखा है कि बाज़ दफ़ा वो काम जो बड़े इखलास से शुरू होते हैं, अल्लाह की मोहब्बत से शुरू होते हैं, बाज़ दफ़ा वो फिर अल्लाह से ज़्यादा किसी और चीज़ को प्रमोट करने में चलने लगते हैं। मुझे तो हर वक्त इस चीज़ से डर लगता है कि क्या मेरी ये सारी कोशिशें अल्लाह के लिए हैं, किसी ख़ास इंसान को खुश करने के लिए तो नहीं मेरी नेकियाँ, किसी एक इंसान से वाह वाह करवाने के लिए तो नहीं। इंसान अपने आप को चेक करता रहे तो बचेगा, वरना याद रखिए शैतान तो मौत तक इंसान को आजमाता रहता है। तो इखलास है कि नहीं, इसको देखने का एक बहुत आसान तरीका आपको बता देती हूँ जो मुझे भी हमेशा फ़ायदा देता है। और वो क्या है कि जिस काम को मैं करती हूँ इसके नतीजे में मैं अल्लाह के करीब हो रही हूँ या उससे दूर, या जो काम मैं करने लगी हूँ इससे मुझे फ़ायदा होता है कि नहीं। अगर मुझे फ़ायदा होता है तो मुझे ये काम करना है। बाज़ दफ़ा बाज़ लोग परेशान रहते हैं इन बातों पे, डिसीजन नहीं ले पाते, करें कि ना करें, किससे पूछें। एक से पूछेंगे वो एक बात कहेगा, दूसरे से पूछें तो दूसरा कहेगा। पहली तो बात यह है कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन मशवरा अपने से ही मांगा है, इस्तखारा कर लें, फिर उसके बाद ख़ुद से बातें करना भी सीखें। ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम होगा। अभी आपको इंशाल्लाह खुद कलामी पे भी कुछ बात बताऊंगी, लेकिन अपने आप से पूछ लिया करें कि जो काम करने लगी हूँ क्या मुझे इससे फ़ायदा होगा या होता है। तो बस फ़ायदा होगा तो फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, इजाज़त लेने की तो बात ही नहीं है। और अगर फ़ायदा नहीं होता तो वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं, फिर इंसान कुछ और काम करे उस वक्त में। इसी तरह अगला नुक्ता आप लिखेंगे अपने लिए, क्या मैं माल इस तरह जमा तो नहीं करती कि ना मुझे फ़ायदा हो और ना दूसरों को। क्या मैं अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत का लुत्फ़ महसूस करती हूँ। क्या दिन भर में अक्सर वक्त में मैं अपने जिस्म से ऐसा काम लेती हूँ कि जो अल्लाह की इबादत में शुमार हो। यहाँ एक गलतफहमी का इजाला कर दूँ कि इसका ये मतलब नहीं कि हर वक्त मस्जिद में बैठना या जाए नमाज पे बैठना इबादत है। हर काम, बंदे मोमिन का हर काम इबादत है। आपका जिक्र, आपका अजकार, आपका जहन अगर किसी बात में चलता है किसी और चीज़ में तो वाकई आप इबादत की हालत में हैं। मैंने एक आपके लिए तैयारी कर रही हूँ, मैं नेक्स्ट कोर्स के सिलसिले में एक बुक है तो उससे कि कैसे यानी इल्म सीखने के और सिखाने के आदाब है, तो उसमें मुझे एक सी चीज़ पढ़ी तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने लिखा हुआ था कि इल्म के नाते से हर अमल ही इबादत है। यानी मीन के हम तो समझते हैं ना कि इस वक्त हम क्लास में हैं, 3 घंटे की क्लास है या 2 घंटे की क्लास है तो ये इबादत है, नहीं। उन्होंने लिखा उसके लिए सोचना, प्लानिंग करना, तैयारी करना, उसकी मीटिंग करना। तो मैंने इतना दिल से अल्लाह का शुक्र किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो हमेशा अपने से शिकवा रहता है कि इबादत का वक्त नहीं मिलता या उस तरह करने की वजह दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ ऐसे ही काम हो जाए जिससे इल्मी तौर पे फ़ायदा हो, तो कुछ इंशाल्लाह क़यामत के दिन कफ़ारे हो ही जाएंगे। लेकिन हकीकत है कि बंदे मोमिन का हर वक्त ये एहसास अपने लिए रखना कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाज़िर हूँ। ये सिर्फ हज का कलमा नहीं है या उनका नहीं है जो जाके वहाँ हज या उमरा करें, बंदा मोमिन से हर लम्हे अल्लाह ताला यही चाहता है, हाजिर हो? जी अल्लाह हाजिर हो। क्या कह रहे हो? ला शरीक लक लब्बैक, तेरे साथ कोई शरीक नहीं, मेरी सोचों में तेरे सिवा कोई नहीं, मेरी मोहब्बत तेरे लिए, मेरा सारा नफ़ा नुकसान तुझसे है। जब आपको इस तरह बातें करनी आ जाएंगी ना अपने रब से, तो आपका उठना बैठना सब इबादत बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगला पॉइंट लिखिए चेकलिस्ट का। क्या मैं अल्लाह की मोहब्बत का दावा तो करती हूँ लेकिन उसकी इताअत करती हूँ कि नहीं? अगला पॉइंट आप लिखेंगे, मेरे दिन में कितना वक्त बेकार गुजर जाता है कि जिसमें ना मैं माफ़ी मांगती हूँ और ना गुनाहों से बचने की कोशिश करती हूँ और ना कोई अच्छा काम करती हूँ। 3 बातें हैं इसमें, आपने महसूस की होंगी। या तो पिछले गुनाहों पे माफ़ी मांग लीजिए, ये कब होता है? जब इंसान एक लंबा अरसा गुजार के दुनिया में दीन की तरफ आता है। फिर दूसरा क्या है कि ना गुनाहों से बचे, ये हाल से है कि मैं इस वक्त गुनाह से बच रही हूँ। चलें गुनाह से नहीं बच रहे तो फिर कोई तीसरी चीज़ क्या है कि अच्छा काम कर लें। इन 3 में से 1 काम हर वक्त करते रहा करें या अच्छा काम करें, ये सबसे आला दर्जे की बात है। इसका मौका नहीं है तो फिर किसी पेश आइन गुनाह के मौके का, यानी कोई गुनाह का मौका सामने मौजूद है उससे इज्तनाब करें, और अगर ये भी मौका ना हो तो फिर अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फिर अगला पॉइंट इसमें आपकी चेकलिस्ट का क्या होगा? क्या मेरा ज़हन हर वक्त बेकार बातों को तो सोचता नहीं रहता? अच्छा, ये बेकार बातें होती क्या हैं ज़रा सोचिए। अपनी दुनिया में आ जाएं वापस, इल्मी दुनिया से। बेकार बातें क्या होती हैं? मसलन आप भी सोचें पहले अपने पास, फिर मैं बोलूँगी। अगर मैं पहले से बोल दूँगी तो आप नहीं सोचेंगे। मुझे क्या लगती हैं बेकार बातें? फ़लाँ ने मेरे बारे में पता नहीं क्या कहा होगा, वो फ़लाँ, बस मुझे लगता है कि वो तो मेरे ख़िलाफ़ बात करता है हमेशा, और वो जो फ़लाँ काम है ना, बस वो तो मुझे जलाने के लिए फ़लाँ ने किया। और देखो ये इतना अच्छा सूट जो पहन के आई है ना, ये इसलिए कि मेरे कपड़े दूसरे ना देखें। अच्छा, पता नहीं मेरा शोहर कहाँ होगा इस वक्त। अच्छा, माँ के घर गए, मेरा ख्याल है वो उसको मेरे ख़िलाफ़ कर रही होंगी। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये होती हैं बेकार बातें, लोगों में घूंचते रहना, लोगों में घूमते रहना। निकालिए इन बातों को जहन से। अच्छा, फिर अंदेशे भी होते हैं मुस्तकबिल में ये ना हो जाए, पता नहीं क्या होगा, फ़लाँ मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, अच्छा मेरे शोहर को ना हो जाए, और इसी में लोग मरीज़ बने रहते हैं। नहीं, पॉजिटिव काम कीजिए, सारे अंदेशे निकल जाएंगे। अच्छा, मुझे लगता है मुझे फ़लाँ बीमारी हो जाएगी, अच्छा कहीं खुदा ना खास्ता मुझे कैंसर ना हो जाए, अच्छा अगर मैं मर गई तो फिर क्या होगा। ये वसवसे शैतान के होते हैं, इससे पनाह मांगा करें। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन हमज़ाति शैतान, इसके वसवसों से अपने आप को बचाना है। फिर उसके बाद अगला नुक्ता आपकी चेकलिस्ट का क्या होगा? क्या मैं हर वक्त लोगों को खुश करने की कोशिश करती हूँ या अल्लाह को? लोगों को बंदा कैसे खुश करता है? एक तो खुशी होती है ना जो किसी को खुश करना, आप इसको समझ लें, ऐसा ना हो कि मिसअंडरस्टूड करें, क्या लोगों को खुश नहीं करना चाहिए? यकीनन करना चाहिए, लोगों की खुशी अल्लाह ताला की खुशी है, इसमें कोई हरज नहीं। क्या माँ बाप, घर वालों, दोस्तों अहबाब को खुश नहीं करना? करना है। यहाँ कौन सी खुशी मुराद है? चापलूसी, लोगों को ऐसी बात कहना कि ये मुझसे खुश हो जाएं, इसने मुझे ऐसी बात बताई कि देखो मुझे इससे ये मिला, नहीं। या लोगों को इसलिए खुश करना कि मुझे उनसे माल मिल जाए। बाज़ लोग खुश करते हैं, लोगों की जूतियाँ सीधी करते हैं ताकि कुछ माल हमें मिल जाए, बख्शीश हो जाए। तो हर बंदा अपने हिसाब से इसको देख सकता है। और आखिरी नुक्ता है चेकलिस्ट का, क्या मेरी उम्मीदें और मेरा खौफ उनसे तो नहीं जो ना मेरे नफ़े के मालिक हैं और ना मुझे नुकसान दे सकते हैं? क्यों? इसलिए कि जब किसी ऐसे से डरेंगे जिसके हाथ में कुछ नहीं, तो यकीनन अल्लाह ताला के साथ हमारा मामला कमज़ोर हो जाएगा। तो ये थी चंद बातें टाइम को मैनेज करने के नाते। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप ख़ुद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की। अपनी ज़िंदगी को क्लासिफाई कीजिए, जैसे घर के कपड़े और बाहर के कपड़े अपने अलग रखे होते हैं ना अपनी वार्डरोब में, ये पार्टी ड्रेसेस हैं। बाज़ लोग काफ़ी फारिग होते हैं और इन कामों में लगे ही रहते हैं, ये गर्मियों के हैं, ये सर्दियों के हैं। हालांकि कपड़ियों और कपड़ों की क्या वैल्यू है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन हम उनको कितना वक्त देते हैं। बर्तन हमने अलग रखे होते हैं, ये आम इस्तेमाल के हैं, ये कभी कभी के हैं, और कुछ तो सिर्फ शो के ही होते हैं जो कोई नहीं खाता उनमें। शोहर बेचारा भी कहते ही होगा कभी तो मुझे भी उसमें खिला दो क्योंकि मैंने ख़रीदे थे, क्योंकि हम कहते नहीं कोई आएगा तो फिर तुमको भी मिल जाएंगे उस। बहरहाल ये तो एक छोटा सा जोक था, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया की चीज़ों के लिए हमने क्लासिफिकेशन की हुई है, तो वक्त जो सबसे कीमती चीज़ है उसके लिए क्यों नहीं करते? माल को भी लोग संभाल के रखते हैं, ये कभी मुश्किल में काम आएगा, अच्छा ये पैसे जो है मैं इसलिए जमा कर रही हूँ कि मुझे रेफ्रिजरेटर ख़रीदना है, ये फ़ीस देनी है, तो वक्त क्यों हम बेकार कामों में इस्तेमाल करें? इसके लिए अपने आप को ऑर्गेनाइज करके पूरी कोशिश करें, तैयारी की, और फिर उसके बाद इंसान इसमें मेहनत करेगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको इसमें बरकत भी दे देगा और फिर वो काम अच्छे करने के काबिल हो जाएंगे।